जहां एक ओर आन्या अपनी सौतेली माँ कावेरी के जाल में फंसी हुई थी और अपने कमरे में बंद रोते हुए अन्वय को याद कर रही थी, वहीं दूसरी ओर शाम को अन्वय काउंसिल पहुंचा। वहां सभी एरिया के प्रतिनिधि मौजूद थे और सबसे ऊपर लगी कुर्सी पर रौबदार चेहरे वाला आदमी बैठा था। वो इस काउंसिल का अध्यक्ष था, प्रताप, जिनकी बात सभी को माननी ही पड़ती थी। अन्वय पहली बार ऐसी किसी जगह आया था और उसके साथ जैक भी था। उसके ठीक सामने वाली कुर्सी पर विक्रांत बैठा गुस्से से उसे घूर रहा था, पर अन्वय ने उसे एक बार भी नहीं देखा। मिस्टर प्रताप ने विक्रांत को देखते हुए कहा, कहो विक्रांत, अपनी बात रखो सबके सामने। काउंसिल अध्यक्ष महोदय, मास्टर अन्वय ने हमारे कुछ साथियों को कल हमारे ही क्षेत्र में घुसकर मार दिया है और ये काउंसिल के नियमों के विरुद्ध है। विक्रांत ने अन्वय को बेहद गुस्से से घूरते हुए अपनी बात कही। वहीं उसके इल्जाम को सुनकर अन्वय ने शांति से जवाब दिया, किसी दूसरे क्षेत्र के सम्राट को बंदी बनाकर अपने महल में छिपाकर रखना भी काउंसिल के नियमों के खिलाफ है। आप कहना क्या चाहते हैं अन्वय, किसने यहाँ किसी दूसरे क्षेत्र के सम्राट को बंदी बनाया हुआ है? काउंसिल अध्यक्ष मिस्टर प्रताप ने उल्टे अन्वय से सवाल कर दिया, जिसे सुनकर अन्वय के लबों पर तीखी मुस्कान फैल गई और उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, ये आप सभी जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर अफसोस की बात है कि आपके नियम सिर्फ हमारे कुटुंब पर ही थोपे जाते हैं, क्योंकि विक्रांत से तो आपके खास संबंध है ना, तो आपको तो उसका पक्ष लेना ही है। खैर छोड़िए, मैं यहाँ इस बारे में बात करने नहीं आया। जब आप सबने सालों से अपनी आंखों को बंद किया हुआ है ताकि आपके आसपास चल रहे षड्यंत्रों को ना देख सकें, तो आपसे कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं है। पर आप सबके तरफ मैंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी हुई है। सालों से यहाँ से दूर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये नहीं पता कि किसके दिमाग में यहाँ क्या चल रहा है। बस खामोश हूँ, क्योंकि हिंसा में विश्वास नहीं रखता मैं। पर अब और नहीं, अब जो भी सालों से गलत होता आ रहा है उसे मैं ठीक करूँगा, वो भी अपने तरीके से, और आप में से किसी को भी मेरे काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। तो आप काउंसिल के विरुद्ध जाना चाहते हैं, अध्यक्ष ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा। उनके सवाल सुनकर अन्वय ने शांति से जवाब दिया, जी नहीं, मैं बस गलत के खिलाफ जाने वाला हूँ। किसी का हक छीनने का शौक नहीं मुझे, बस अपने हक के लिए जंग लड़ूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी गद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस अपने समुदाय को उनके दुश्मनों से सुरक्षित रखना है। हाँ, और उसके लिए आप दूसरों के क्षेत्रों में घुसकर उनके सदस्यों को मारने लगे हैं ताकि उनके क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर सके, जैसे वर्षों पहले तुम्हारे पिता ने किया था, विक्रांत ने बेहद गुस्से में गरजते हुए सवाल किया। पर अन्वय ने अब भी शांति से जवाब दिया, मेरे पिता ने किसी के क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया था, उन्हें वो पद उनके पिता समान गुरु ने सौंपा था। रही बात मेरी, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे क्षेत्र में घुसकर तुम्हारे सदस्यों को मारा है? जबकि मैं तो सालों से एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा हूँ, फिर मुझे क्या जरूरत पड़ने लगी कि मैं किसी पर बेवजह हमला करूँ? जब मैं खुद सुकून से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं कभी आपके समुदाय का हिस्सा ही नहीं बना, तो तुम्हारे क्षेत्र को अपना बनाने का ख्याल कहाँ से आएगा मेरे अंदर? मैंने तो कभी अपने क्षेत्र के शासन करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, तो किसी और के क्षेत्र को अपने अधिकार में भला क्यों लेना चाहूंगा मैं तो आज यहाँ आया भी इसलिए था क्योंकि मुझे खास यहाँ बुलाया गया है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हारे समुदाय के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। फिर भी अगर तुम इतने विश्वास के साथ मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो, तो कोई ना कोई सबूत तो होगा ही तुम्हारे पास। साबित कर दो कि मैंने ही तुम्हारे साथियों को तुम्हारे क्षेत्र में घुसकर मारा है। उसकी बात सुनकर विक्रांत गुस्से से बोला, सबूत है हमारे पास। हाँ तो सबको दिखाओ ना सबूत कि तुम सच कह रहे हो और मैं झूठ बोल रहा हूँ। अन्वय पूरे तरह से तैयार लग रहा था। उसकी बात सुनकर विक्रांत ने खिसियाते हुए कहा, हमारे एक साथी ने सब अपनी आंखों से देखा है, इसलिए तुम्हारा झूठ तुम्हें बचा नहीं सकेगा। मैंने कब कहा कि मुझे छोड़ दो? अगर मेरे खिलाफ सबूत है तो दो मुझे सजा, और अगर नहीं है तो मेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अन्वय ने अब सख्त लहजे में कहा। विक्रांत जबड़े भींचते हुए बोला, मैं उसे तुम्हारे सामने नहीं ला सकता, तो मैं भी तुम्हारे लगाए झूठे इल्जामों को सच नहीं मान सकता। तुमने बेवजह मुझे यहाँ बुलाकर मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। आगे से जब तक मेरे खिलाफ पर्याप्त सबूत ना हो, मुझे कोई भी बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मेरा वक्त और एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इजाजत चाहूंगा, क्या है ना, बहुत वक्त बाद लौटा हूँ तो बहुत काम करने को रहते हैं। इतना कहकर वो उठकर वहां से निकल गया। जैक भी उसके पीछे चल दिया और विक्रांत के साथ साथ बाकी सभी उसको गुस्से से देखते ही रह गए। अन्वय वापस अपने महल आ गया और अपनी सेना को और पावरफुल बनाने के लिए योजना बनाने लगा। अब उसको कैसे भी करके अपने पिता को उनकी कैद से छुड़ाना था और यहाँ से खराब व्यवस्था को भी ठीक करना था। उसके 3 दिन इन्हीं सब में निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आन्या एकदम रोबोट की तरह हो गई थी। सुबह शाम उसके कमरे में खाना आ जाता तो वो खाती और बिस्तर पर पड़ी पड़ी अन्वय के बारे में सोचती रही। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था उसे। आज उसके घर में मेहमानों की भीड़ जमा थी, शादी थी उसकी। शाम का वक्त था, बाहर सब तैयारियों में लगे थे। अजय भी वापस आ गया था। कुछ देर में आन्या तैयार होकर बाथरूम से बाहर आई। उसने सुर्ख लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था पर चेहरा एकदम मायूस था।